वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
हमने ये देखा था कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये पूछा कि मेरा अभी इस समय क्या धर्म है, ये युद्ध भूमि में मेरा अभी धर्म क्या है, ये मेरे को अभी ठीक से पता नहीं लग रहा है, मैं मोहित हो गया हूँ, मुझे बताइए मेरा धर्म क्या है। तो भगवान को पता लग गया कि इसको जो है ये दुख लगा है। किस कारण लगा है? सामने लोग जो खड़े हैं उनके अंदर ये मैं और मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, इसके कारण जो है इसको शोक हुआ है। और ये शोक बिना आत्मज्ञान के नहीं जाएगा, इसलिए भगवान उसको ये सीधा उत्तर नहीं देते हैं कि तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, युद्ध करने के लिए आए हो, युद्ध करो, ऐसा नहीं कहते हैं। उसको आत्मज्ञान से शुरू करते हैं कि बिना आत्मज्ञान के ये शोक नहीं जाएगा, इसलिए भगवान ने आत्मज्ञान देना शुरू किया। और शुरू शुरू में पहले ही श्लोक में कहते हैं कि जिनके बारे में तुम शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं योग्य है? बोले पंडित, पंडित कौन है? आत्मज्ञानी। शंकराचार्य जी कहते हैं जिनको आत्मा के बारे में ज्ञान है वो पंडित है। तो बोलते हैं पंडित जो है जो जा चुके हैं गतासून, और जो अगतासून जो अभी है यहां पर, दोनों के बारे में नहीं सोचते। जिनको आत्मा का ज्ञान है उनको ये पता है कि आत्मा नित्य है, आत्मा ना मरती है न कुछ होता है, उसमें कोई विकार होता है न उसका जन्म होता है, इसलिए वो नहीं सोचते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सामने ये जितने भी राजा लोग खड़े हैं ना, ये पिछले जन्म में भी थे, अभी तुम्हारे सामने खड़े हैं, और इसके बाद वाले जन्म में भी ये रहेंगे। और बाकी रही तुम्हारी देह की बात में, तो कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, बोले देह के अंदर जो कुमार अवस्था रहती है, बाल्यावस्था रहती है, बचपन रहता है, उसका यौवन आता है, उसके बाद जरा आती है, तो बचपन मरता है उसके बाद यौवन आता है, यौवन मरता है तो उसके बाद में बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा मरता है उसके बाद में बचपन आता है। बोले ये तीन चीजें आपको समझ में आती है ना, बचपन यौवन बुढ़ापा ये नजर आता है, मगर बुढ़ापे के बाद में फिर जो बचपन आता है ये पोर्शन हमको नजर नहीं आता है। तो कहते हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। धीर जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ये पता है कि मरने के पश्चात में फिर बचपन आएगा, तो इसलिए वो मोहित नहीं है। उसके बाद कहते हैं भगवान कहते हैं अर्जुन सोच रहा था कि भगवान ये तो बाद की बात कर रहे हो, मैं तो अभी दुखी हूँ, अभी बताओ क्यों दुखी हूँ। तो मात्रा स्पर्शास्ते तो कौनते या शीतोष्ण सुख दुख दा, बोले ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पर जो सुख दुख की होती हैं वो क्यों होती हैं? बोले कि आपकी ज्ञान इंद्रियां जब विषयों के साथ में संपर्क में आती हैं तो सुख दुख होगा ही, शीत उष्ण होगा ही। तो इसके अंदर क्या करना है, बोले ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी आएंगी, आप रोक नहीं सकते, ये जाएंगी, ये भी निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये अनित्य हैं, टेम्पररी हैं, ये कुछ काल के लिए रहेंगी, इसलिए तुम तितिक्षा करो अर्जुन, इनको सहन करो। ये स्थितियां जो आ रही हैं सुख दुख की, किसके कारण आ रही हैं? आपके कर्म के कारण आ रही हैं। जो कर्म कर चुके हो अब उसको तो हम कुछ और नहीं कर सकते, सुख दुख तो लेना पड़ेगा। कर्म करने के पहले अगर सोच लो कि हमको सुख ही सुख चाहिए तो अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। अपना भाग्य अगर आज बनाना है तो आज से आप अगर अच्छे अच्छे कर्म करते जाओगे तो क्या बुरा फल आएगा क्या? तो आपका भाग्य का निर्माता कौन है? हम हैं। मगर जो पीछे कर चुके हैं उनका क्या होगा? उसका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए सहन करो, तितिक्षा करो। सहन करने से क्या मिलेगा, अर्जुन सोच रहा है, सहन करो बोलते जा रहे हैं, क्या मिलेगा? तो बोले हाँ, अगर तुम सहन कर सकोगे, तुमको अगर व्यथा नहीं हो, दुख नहीं हो, तो कहते हैं कि आत्म तत्वाय कल्पते, आत्म तत्व पाने के लिए तुम फिट हो जाओगे, अधिकारी बन जाओगे। क्या साइंस है पीछे में? मन अगर शांत रख सके हम तो शांत मन के अंदर ज्ञान बैठता है। अगर मन आपका अशांत है, मन अगर राजसिक है, मन अगर तामसिक है, ज्ञान नहीं बैठेगा। भगवान थोड़ा सा डिटूर करके फिर अब जो है आत्मा पर आते हैं, कहते हैं नास तो विद्यते भाव, कि असत का तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है। दुनिया में दो ही चीज है, एक सत है और दूसरी असत है। बोले असत तो है ही नहीं, और सत का बोले कभी अभाव नहीं होता। तो ये हम लोगों ने देखा था, आप लोग को अगर याद हो, जिसके बारे में बुद्धि बदलती रहती है, शंकराचार्य जी ने कहा वो सारी चीजें असत हैं, और जिसके बारे में बुद्धि नहीं बदलती है वो सत है। घड़ी है, चश्मा है, घड़ी की जगह चश्मा आ गया, मगर है जो है चलता रहा, तो सत क्या है? है। और ये घड़ी और चश्मा ये बदल रहा है, इसलिए ये असत है। उभयरूपी दर्शन तो जो इन दोनों को देखता है वो जो है धीर है, वो ही तत्वदर्शी है। उसके बाद कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वविदं ततम, जिसके द्वारा ये सारा संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी जानो, वो कभी नाश नहीं होता। ये है पना जो है उसका कभी नाश नहीं होता। विनाशम अवश्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, और उसका विनाश करने में कोई भी योग्य नहीं है, कोई उसका विनाश नहीं कर सकता। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, अगर आपको याद हो, हमने पेड़ काट दिया, अब पेड़ नहीं है, क्या बन गया? वो लॉग है, लॉग को चीर दिया, अब लॉग नहीं है, प्लैंक है अभी चल रहा है सबके साथ में, प्लैंक को काट के फर्नीचर बना दिया, प्लैंक खत्म हो गया, फर्नीचर है, फर्नीचर को जला दिया, क्या हुआ फिर? राख है, राख को मिट्टी में मिला दिया, राख खत्म हो गई, मिट्टी है अपना चलता रहा, मगर बीच के अंदर बाकी जितने चीजें जो बदलती रही वो सारी की सारी असत थी। बोले आप इस है पने का कभी विनाश नहीं कर सकते। आप सब कुछ दुनिया की चीजें विनाश कर सकते हो, मगर है का विनाश कभी नहीं होगा। बोलते विनाश किसका है? बोले अंत बंत ही में देहा, जितनी भी देह हैं ये सारी अंत वाली हैं, अंत बंत ही में देहा सारी अंत वाली हैं। नित्य से उक्ता शरीर न, और जो शरीर इसके अंदर है, जो रहने वाला इसके अंदर है, जो आत्मा इसके अंदर है, वो नित्य है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। अनाशिनो अप्रमेयस तस्मात युद्धस्य भारत। तो पहला कंक्लूजन आया, जैसे ही वर्ड तस्मात आए ना तो आप समझ लेना एक कंक्लूजन आ गया, एक भगवान ने जो है उसको विचार करके कंक्लूजन निकाल दिया, एक निगमन कर दिया कि अंत बनते ही मैं देहा। बोले ये देह जितने दिखाई पड़ते हैं ये सारे नाश वाले हैं, अर्जुन तुम इन लोगों को मारो नहीं मारो ये मरेंगे जरूर, ये तो निश्चित है, मगर इनके बीच में जो आत्मा तत्व है वो जो है नहीं मरता, अंत अंत में देव, हाँ नित्य जो उगता शरीर ना, शरीरी जो इसके भीतर है वो नित्य है, अनाशिनो अप्रमेयस है, वो जो शरीरी है उसका नाश नहीं होगा, अप्रमेयस है, उसको हम एक घड़ी की तरह नहीं देख सकते, ऑब्जेक्ट की तरह आत्मा को नहीं देख सकते, कोई अगर कोई एक एक मेरे को आत्मा दिखा, अप्रमेय उसको आप ऐसे नहीं देख सकते, अप्रमेय तस्मात देयरफॉर युद्ध करो। देखो भगवान, देखो आत्मा की केवल एक क्वालिटी को लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, हर जगह आप देखोगे आत्मा की केवल नित्यता 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 दिखा रहे जा रहे हैं कि आत्मा नित्य है, नित्य है, कोई इसके अंदर आनंद स्वरूप की चित्त स्वरूप इन सब का कोई वर्णन नहीं हो रहा है, केवल आत्मा की नित्यता बता रहे हैं, क्योंकि उसके मन में ये अर्जुन के मन में ऐसा विचार था कि मेरे द्वारा ये सब मारे जाएंगे, इसलिए आत्मा की नित्यता के ऊपर में भगवान जोर दे रहे हैं। उसके बाद में भगवान ने कहा ये एनम वेत्ति हंतारम यस्य एनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। बोले अगर कोई ये कहता है कि मैं मारने वाला हूं या मैं मारा जाऊंगा, उभौ तौ न बिजानी तो, बोले दोनों किसी को पता नहीं है, नायम हंति न हन्यते, कि आत्मा न मारता है न मरता है। अब आप लोग पूछे कि क्या मरने वाले मारने की खाली बात करते हो, और कुछ नहीं आपको मालूम है क्या? भाई अर्जुन युद्ध भूमि में था, अर्जुन को यही था ना कि मैं मारने वाला हूं और या मैं मारा जाऊंगा, तो भगवान कहते हैं न आत्मा मारता है, मतलब आत्मा करता नहीं है, और न आत्मा के ऊपर कोई क्रिया हो सकती है, आत्मा कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा किसको पर आप जो है क्रिया कर लो, कभी नहीं होगा। अच्छा मरने मारने की बात छू, आत्मा छूता नहीं है, आत्मा छुआ नहीं जा सकता, देखो दोनों हो गया ना, आत्मा छूता नहीं, आत्मा में कर्तापन नहीं है, आत्मा आके गिलास नहीं छू सकेगा, और ना आत्मा को आप छू सकते हो, न आत्मा देखता है न आत्मा देखा जा सकता है। आया समझ में? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आत्मा बिना 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 स्थूल शरीर का है, बिना सूक्ष्म शरीर का है, बिना कारण शरीर का है, तो विदाउट क्रॉस बॉडी सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी आप कुछ नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको आंख चाहिए कि तब तो देखोगे, आत्मा के पास आंख ही नहीं है देखेगा कैसे? देख ही नहीं सकता वो। बहुत अच्छा, तो बोले ना करता है ना उसके ऊपर में क्रिया हो सकती है। फिर उसके बाद में 21वें नंबर श्लोक तक हम लोगों ने आगे देखा है, यहाँ भगवान कहते हैं वेदा अव्यनाशिनम नित्यम ईदम व्ययम कथम से पुरुषा पार्थम कत घातेति हंतिकम। वेदा बोला आप ठीक से जान लो, क्या जान लो? कि आत्मा अविनाशिनम, उसका नाश नहीं है, नित्यम, ये सारे वर्ड हम लोगों ने डिटेल में देखे, वो नित्य है, नित्य का मतलब क्या देखा था हम लोगों ने? उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, और हम लोगों ने सिद्ध कर दिया था आत्मा का जन्म नहीं होता, सिद्ध कर लोगे ना आप लोग फिर से? भूल तो नहीं गए 15 दिन के अंदर? आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और ये आत्मा अव्ययम है, ये न किसी को मारता है न किसी को मरवाता है, किसी को उत्तेजित नहीं करता कि जाके मारा हो आत्मा को, बोले कुछ नहीं करता है। बहुत खूब बहुत खूब। बोले इसके बाद भगवान कहते हैं
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि।
शंकराचार्य जी संबंध भाष्य में लिखते हैं कि यहाँ प्रकरण में आत्मा के अविनाशी तत्व की प्रतिज्ञा की गई है। आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, इसको भगवान जो है प्रूफ कर रहे हैं। वह किसके सदृश है, एक एग्जाम्पल देकर आप समझाते हैं कैसे किस सदृश है। तो कहा जाता है वांसांसि जीर्णानि, जैसे पुराने वस्त्र हो जाते हैं, मैले वस्त्र हो जाते हैं, तो उसको जब हम छोड़ के नए वस्त्र पहनते हैं तो पहनने वाले को कुछ होता है क्या, कोई फर्क पड़ता है? हम रोज सवेरे नहाते हैं, पुराने वस्त्र छोड़ते हैं, तो आपको क्या दुख होता है क्या? नहीं होगा। नए वस्त्र धारण करते हैं, देखो पुराने वस्त्र पहनने से आदमी पुराना नहीं हो जाता, फटे हुए वस्त्र पहन के, गंदे वस्त्र पहन के आदमी गंदा नहीं हो जाता, होता है क्या ऐसा? या नए वस्त्र पहन के आदमी फिर नया नहीं हो जाता, जवान नहीं हो जाता, बुढ़ा बुढ़ा ही रहेगा? तो वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता, और उनको वस्त्र को चेंज करने में, बोलो उसमें भी कोई पेन नहीं है, कोई दुख नहीं होता है, बहुत अच्छा। ठीक है, वस्त्र हम लोग डिफरेंट टाइप के पहनते रहते हैं, अभी आप सत्संग में आए, अच्छे वस्त्र पहन के आए हो, जब सोने जाओगे तब दूसरे वस्त्र आपके होंगे, कल टेनिस खेलने जाओगे फिर दूसरे किस्म के वस्त्र होंगे, ऑफिस में जाओगे फिर दूसरे किस्म के वस्त्र होंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा। तो ये कौन तय करता है वस्त्र बदलना? जीव तय करता है, हम तय करते हैं ना, हमने अभी कौन से वस्त्र पहनने हैं, कौन तय करता है? हम तय करते हैं। अब लोग कहते हैं कि शरीर जो है, ये बच्चा अभी 10 साल का था ये कैसे मर गया, या गर्भ के अंदर ये बच्चा जो है कैसे मर गया, उसकी इच्छा है? कौन ठीक करता है? जीव ठीक करता है ना, मेरे को ये वस्त्र नहीं चाहिए, अभी हमको स्पोर्ट्स वियर पहनना है, अभी हमको ऑफिस ड्रेस पहननी है, अभी हमको नाइट ड्रेस पहननी है, हम ठीक करते हैं। तो ये शरीर भी जो है बदलना है, कौन ठीक करता है? हम ठीक करते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये आदमी 15 साल की उम्र में चला गया है, 20 साल इसका की उम्र थी जाने की क्या, अभी कैसे तय होता है? देखो एक योगी था, वो जंगल में योग कर रहा था, सिद्ध पुरुष था, वो योग करते करते उसके मन में आया कि मैं राजा बन जाऊं। जैसे ही उसके मन में आया वो मर गया, सिद्ध पुरुष था, उसके मन में विचार आया मैं राजा बन जाऊं, वो दूसरी जगह जाके जन्म ले लिया राजा की फैमिली में, कुछ दिन बड़ा हुआ तो बोला अरे मैं तो राजकुमार बन गया। अब उसको जैसे ही पता लगा कि मेरी इच्छा थी राजा बनने की, वो तो योगी था ना, जैसे मन में इच्छा आई शरीर छूट गया, वहां पहुंचा राजकुमार, जैसे पता लगा राजकुमार बना प्रारब्ध खत्म हो गया, वो शरीर छूट गया, जैसे वो शरीर छूट गया फिर एक योगी कुल में जाके पैदा हो गया। पहले योगी था वापस योगी हो गया। तो कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं। देखो बच्चे की ड्रेस बदलनी होती है, कौन डिसाइड करता है? माता पिता ड्रेस करते हैं ना, अभी स्कूल जाना है ये ड्रेस पहनो, अभी घूमने जाना है, अभी सोने जाना है ये ड्रेस पहनो, करते हैं ना। हमारे माता पिता कौन है? ईश्वर है। कहते हैं ना तबे माता च पिता तबे, वो है, वो डिसाइड करते हैं। तो उनके पास में 84 लाख पोशाकें हैं। पसंद कौन करता है? कैसे आप पसंद करते हैं? देखो आप खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो कभी कभी ये बोलते हो कि वाह ये चमड़े वाला कोट बड़ा अच्छा है, ये कौन सा है चमड़ा भाई? कभी कोई बोलता है ये गाय का है, कभी भैंस का है, कभी बोलेंगे मृग का है, कभी नेवले का है। तो आपको पसंद आया ना, आप पैसे दे के खरीद के पहनते हो ना, पसंद किसकी है? आपकी है ना। अब आपकी पसंद अगर ऐसी हो और आपको दूसरा जन्म भगवान जो है नेवले का या मृग का या ऐसा कुछ, आपको ठंडी जगह में रहने लायक उस पोशाक में आप रह सको, ओरिजिनल चमड़ा आपको दे दें, किसकी पसंद है वो? है ना, हमारी पसंद है ना, आपने पसंद किया है, इतने खर्च किए उसके ऊपर पैसे। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है आपकी पसंद के हिसाब से हम देते रहते हैं उसको। तो अर्जुन भीष्म द्रोण ये सब जो खड़े हुए हैं ये मारे जाएंगे, इनको नई पोशाक मिलेगी। 84 लाख योनि की जो पोशाक है भगवान के पास में एक पोशाक बनेगी और उस पोशाक को पहन के फिर ये उसके बाद में उसमें ग्लोरीफाइड होंगे, फिर महिमा को पहुंचेंगे। ठीक है, देखो अगर आप अपने को सूक्ष्म शरीर मानते हो, सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानते हो, तो फिर पोशाक बदली करने में दुखी मत हो। अब सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, जानना पड़ेगा ना। मृत्यु किसकी होती है? हाँ, स्थूल शरीर की होती है। स्थूल शरीर कहाँ है, कौन सा है? ये, और इसको नष्ट होते हम लोग देखते हैं, राम नाम की सत्य है, राम नाम सत्य है करके जाते हैं ना। तो इसका नाश तो हमको मालूम है। और आत्मा भगवान ने कह दिया अविनाशी है, तो फिर आता जाता कौन है? सूक्ष्म शरीर आता जाता है। अगर सूक्ष्म शरीर को अगर आप अपना मानते हो, इसी को आत्मा मानते हो, तो ये सूक्ष्म शरीर बराबर नए वस्त्र धारण करेगा, तो फिर तो आप दुख मत करो उसके लिए। क्यों दुख करते हो? देखो जब हम वस्त्र बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं? सबके सामने बदलते हैं क्या? हम घर खिड़कियां सब बंद करते हैं, कोई देखे नहीं। उसी तरह से जीवात्मा भी जब अपने वस्त्र बदलता है किसी को दिखाई नहीं पड़ता, बाकी चीजें दिखाई पड़ेंगी, मगर जैसे ही वो वस्त्र बदलेगा उस टाइम वो अपने आप को ढक लेता है। देखो यहां पर पुनर्जन्म की बात कह दी गई है, सोचने की बात है, यहां पुनर्जन्म की बात है, रीबर्थ। बहुत लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन होता है, कैसे कहते हो भाई पुनर्जन्म? ठीक है, केवल आपने वस्त्र बदले हैं और क्या है, वस्त्र बदलना ही पुनर्जन्म है। ठीक है, बोलते हैं पुनर्जन्म किसका होता है बताओ आप? आत्मा का पुनर्जन्म होता है क्या? हमने पुनर्जन्म आत्मा का जन्म ही नहीं है, हमने सिद्ध कर दिया आगे। अगर आपको ठीक से याद हो तो पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने सिद्ध कर दिया था कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं होता। और पुनर्जन्म स्थूल शरीर का, उसका भी नहीं होता, क्योंकि उसको हम जला के आए, उसकी तो मिट्टी और उसका पानी सब अलग अलग कर दिया हमने उसको, उसका तो होता नहीं है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म किसका होता है? तो कहते हैं पुनर्जन्म जो है सूक्ष्म शरीर का होता है। कैसे माने? श्रुति कहती है, वेद कहता है, वेद ये कहता है कि पुनर्जन्म होता है, अतिंद्र विषय वेदा प्रमाण ऐसा कहा है। जो चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं उसके बारे में प्रमाण क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज वेद है। अब सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ता है, तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान कहां मिलेगा हमें? वेद में मिलेगा, श्रुति कहती है। और गीता क्या है? उपनिषदों का सार है गीता। भगवान गीता में भी कई जगह कहते हैं त्यक्ता देह पुनर्जन्म न एति, आएगा गीता में, बाद में आएगा। कुछ लोगों का जो है भगवान को प्राप्त होने के बाद में कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, फिर एक जगह आएगा पुनर्जन्म न अपनुवंती माम उपेत्य, जो भगवान को पा लेते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता, ऐसा भगवान कहेंगे। ये भी कहेंगे पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पूर्ण जन्म नहीं होता। तो ये जानने का मुद्दा कहाँ मिलेगा कि होता है कि नहीं होता है? कहते हैं कि नहीं होता, आपको श्रुति कहती है तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, हम तो श्रुति से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम तो नहीं मानने वाले, हमको तो आप प्रूफ करके दिखाओ। मेरा तो अपना विश्वास है पुनर्जन्म नहीं होता, भूतकाल में मेरा जन्म नहीं हुआ, भविष्य काल में जन्म नहीं होगा, हम तो ये मानने वाले हैं, सिद्ध करके दिखाओ पुनर्जन्म नहीं होता। अगर देखो पुनर्जन्म नहीं होता है, अगर ऐसा आप सोचोगे कि दोष में फ्लो आ जाएंगे, दो दोष होंगे, और आप अभी बोलोगे कि नहीं पुनर्जन्म होता है, क्या दोष होते हैं? तो कहते हैं अकृत अभ्यागम दोष, कर्म किया नहीं मगर फल मिल रहा है। आप पैदा हुए, आपने कुछ नहीं काम किया, कोई गोलमाल नहीं किया, आप बीमार हो गए, आपका ऑपरेशन हो रहा है, कि आप गरीब कुल के अंदर जन्म ले रहे हो। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो एक समय में एक स्थान पर जितने बालक पैदा होंगे उनका भाग्य एक सा होगा, नहीं होगा? पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, आपकी बात हम मान लेते हैं, तो उस हिसाब से जितने भी बालक एक समय में, एक पर्टिकुलर समय में जितने भी बालक होंगे, आप बोलोगे कि इंडिया में बालक पैदा हुआ, अमेरिका में हुआ है, तो दो जगह हो गया, अच्छा चलो वो भी मान लेते हैं, एक अस्पताल में, एक लेबर रूम में दो बालक पैदा हों। देखो ट्विंस तो हमने देखा है, वहां पर आप कहोगे भाई उसके अंदर तो दो मिनट का फर्क आ गया है, इसलिए भाग्य बदल गया मान लिया, समय बदल गया वहां। आप ऐसी कल्पना करो एक स्थान पर दो बालक एक समय पैदा हो रहे हैं, उनका भाग्य एक होगा क्या? नहीं होता है। एक धनी है और एक गरीब हो सकता है, एक फुटपाथ पर सोएगा और एक महलों में सोएगा, या आपको कोई पाप का भोग हो रहा है, आपने कोई कर्म नहीं किया, बालक ने कुछ नहीं किया, वो बात भी नहीं कर सकता बेचारा, कुछ नहीं किया उसने, कोई कर्म नहीं किया, मगर उसको दुख भोगना पड़ रहा है कुछ, या सुख भोग रहा है। तो कह रहे हैं कि अकृत अभ्यागम दोष, कर्म नहीं किया मगर फल, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? दूसरा दोष बोलते हैं कृत विप्रनाश दोष, कर्म किया मगर फल नहीं मिला, हमने इस जन्म में कर्म किया है मगर फल नहीं मिला, ये कैसे हुआ फिर, इनको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? इसलिए पुनर्जन्म है। देखो अगर पुनर्जन्म नहीं होगा ना तो वे कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी खत्म हो जाएगी, सारा विज्ञान सारा साइंस जो है ना कार्य कारण कॉज इफेक्ट के ऊपर में निर्भर है, सब उसी के ऊपर निर्भर है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना ही चाहिए, हमें दुख हो रहा है, इसका कॉज जरूर होगा कहीं पर। हमको सुख मिल रहा है, उसका भी कॉज है। हमने कर्म किया, उसका फल नहीं मिला, ये कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद में बोलते रीबर्थ क्या है, थोड़ा समझाओगे क्या रीबर्थ क्या है? किसको कहते हो आप रीबर्थ? समझा देते हैं। देखो आपने, आपके घर में आपने बाल्टी देखी होगी, भले ही वो स्टील की बाल्टी हो या प्लास्टिक की बाल्टी है, उसमें आपने पानी भी देखा है। उस बाल्टी को ले जाके आप अपने बाहर किसी बरंडे में रख दो, जब सूर्य रहे तो उस सूर्य का उसके अंदर प्रतिबिंब भी पड़ेगा, पड़ेगा ना, इतना तक तो ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बाल्टी जो है उसको आप स्थूल शरीर समझो, बाल्टी के अंदर जो पानी है वो सूक्ष्म शरीर है, और उसमें जो प्रतिबिंब सूर्य का पड़ रहा है उसको आप समझ लो आत्मा का, उस ब्रह्मन का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है। आप एक और दूसरी बाल्टी ले आओ, उस बाल्टी के अंदर ये पानी को डाल दो। अब प्रतिबिंब इस खाली बाल्टी में मिलेगा आपको क्या? तो इस स्थूल शरीर से क्या निकल के चला गया? सूक्ष्म शरीर, पानी रूपी सूक्ष्म शरीर इस बाल्टी से निकल के उस बाल्टी में चला गया, प्रतिबिंब उधर चला गया, और ये बाल्टी मर गई, खत्म हो गया, इसमें अब जीवन नहीं है। बोले इस तरह से ये जीव ट्रांसफर करता रहता है। ये आपका सूक्ष्म शरीर में कितनी चीजें हैं? 17 चीजें होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 आइटम लेके सूक्ष्म शरीर बनता है, और ये सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करता है। उसका डायरेक्टर कौन है? कारण शरीर, वासना जिसको कहते हैं कारण शरीर। देखो हम लोग तो जानते हैं एक ही शरीर जानते हैं, मगर वेदांत कहता है आपके पास 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब वासना, वो वासना डायरेक्ट करती है कि हमको कौन सा शरीर चाहिए। बहुत अच्छा, इसके आगे भगवान क्या कहते हैं देखते हैं।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापः, न चैनं क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः।
शंकराचार्य जी कहते हैं संबंधवास में आत्मा सदा निर्विकार किस कारण से है सो कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना आत्मा में विकार नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो स्थान है उसके अंदर विकार हो सकता है। जैसे हमारे जन्म और हमारी मृत्यु के बीच के अंदर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, वैसे आत्मा के अंदर विकार नहीं है। तो निर्विकार कैसे नहीं है? तो कहते हैं कि देखो दुनिया में केवल 4 चीजों से जो है ना नाश हो सकता है। एक तो है अस्त्र शस्त्र से, दूसरा आग से, पानी से, वायु से। तो यहां कहते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आपने शस्त्र बना लिए। बहुत स्थूल एग्जाम्पल देते हैं, शस्त्र किससे बनेंगे? पृथ्वी के अंदर जो मेटेरियल है ना, अब आयरन मिला वहां से, उसके अंदर आपने कुछ बना उना लिया, तोप सोप बना लिया, बंदूक बना ली, एक गोली भी बना ली। देखो गोली भी वहीं से बनी है ना, मिट्टी से ही मिला ना, वो चाहे शीशे की गोली हो, उसके अंदर बारूद जो है वो भी कहां से मिला आपको, मिट्टी से ही मिला। तो पृथ्वी तत्व से जो भी शस्त्र आपने बनाए उससे आत्मा को आप काट नहीं सकते। बहुत अच्छा। नैनम दहति पावक, हमने बहुत चीजों को नाश होते देखा है आग से, हम आग जला देते हैं आत्मा जल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। न चेनम क्लेदयंती आपह, आपह मतलब पानी, आत्मा को भिगो देते हैं। रात में जैसे चने भिगो देते हैं, सवेरे फूल जाते हैं, आत्मा को डुबो देते हैं उसके अंदर, वो फूल जाएगा कुछ नहीं होगा। न सोचते जाती मारुता है, बोलो उसको साफ सुखा देना है, सुखा देंगे एकदम उसको हवा में रख के, बोलो ये भी नहीं होगा। देखो पांच तत्व में से चार तत्व जो है उसका कुछ नहीं कर सकते। और मजे की बात है, पांचवा तत्व तो क्या है, चार तत्व की यहां बात कर दी, पांचवा तत्व तो क्या है, फाइव ग्रेट एलिमेंट्स में कौन सी किस तत्व की बात यहां नहीं आई है? पृथ्वी आ गया, जल आ गया, वायु आ गई, अग्नि आ गई, स्पेस के बारे में कुछ नहीं कहा। आप सोचते हो कि स्पेस, स्पेस जो है उसको नाश कर सकता है, मन में विचार आ सकता है। देखो ये चारों मिलके स्पेस का ही कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जितना भी जोर लगा ले आकाश का नहीं कुछ कर सकते हो। क्या आकाश आपके इतने बड़े बड़े जंगल जलते हैं, आकाश में कुछ होता है क्या, फर्क पड़ता है उसको? इतनी बाढ़ आती है, इतना भूकंप आता है, जो कुछ होता है वहां, आकाश को कुछ फर्क पड़ता है? बोले चार मिलके अगर आकाश का नहीं कुछ कर सकते तो आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा का क्या कर लेंगे वो? आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, आकाश का ही कुछ नहीं किया तो आत्मा का क्या करेंगे? ये श्लोक जो है क्रांतिकारियों को बहुत पसंद था, वो हंसते हंसते ये श्लोक जो है बोलते बोलते फांसी पर चढ़ जाते थे। तो ब्रिटिशर लोग बोलते थे, बोले तो बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है। हाँ बोले क्रांतिकारी का श्लोक है, तो ये किसने लिखा, उस लेखक को पकड़ के लाओ, उसको पहला लिखा किसने उसको, उनको पता लगा कि तो वेद व्यास ने लिखा। अब वेद व्यास बेचारे कहाँ मिले अब उनको। बात को देखो, नेचर के अंदर जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन होता है, आप बराबर ख्याल करना। हमने सर्दियों में पतझड़ होते देखा है, पतझड़ के बाद में फिर क्या होता है, फिर आस्ते 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 उसमें पत्ते आते हैं पेड़ में, पत्तों के आने के बाद में फिर फूल आएंगे, फूल के बाद में फिर फल आएंगे। देखो पत्ते से पहले फूल आया, फूल जब खत्म हो गया उसी जगह पर फल आएगा, फल जब नाश हो जाता है तो उसके बीच में से बीज आ जाएगा, बीज का नाश हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आप उसको लगा दीजिए, फिर एक नया पौधा हो जाएगा, फिर सर्दियां आएंगी, फिर पतझड़ होगा। तो देखो एक के बाद एक नाश जो होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव है। फूल का नाश हुआ फल आ गया, फल का नाश हुआ बीज आ गया। तो प्रकृति में जो भी नाश हमको नजर आता है वो कैसा है, वो कंस्ट्रक्टिव है। मगर मनुष्य जो नाश करता है वो क्या कंस्ट्रक्टिव है?
प्रकृति में अर्थक्वेक होता है,
वो तो भगवान करते हैं, वो हमने नहीं किया है, मनुष्य के हाथ का नहीं है। मगर मनुष्य जो जो करता है, हमने प्रदूषण कर दिया पानी को, हमने प्रदूषण कर दिया वायु को, ये क्या कंस्ट्रक्टिव है क्या? नहीं। ठीक है, इसके आगे एक चीज और समझ लीजिए, कभी भी इफेक्ट जो है कॉज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये रूल है। सोने का अलंकार जो है वो सोना उसका कॉज है, इफेक्ट क्या है ऑर्नामेंट, कॉज क्या है गोल्ड, गोल्ड ऑर्नामेंट क्या है इफेक्ट है। क्या गोल्ड ऑर्नामेंट गोल्ड को नाश कर सकता है? नहीं कर सकता ना। देखा कभी नाश होते है? सब नहीं बोलते हैं, क्या बात है, बहुत मुश्किल बात है क्या ये? सोने के गहने क्या सोने को नाश कर सकता है? गहना नाश हो सकता है, आपने उसको जला दिया, जला के अब नया सेब दे दिया, सोना नहीं नाश हुआ। अच्छा, तो ये इसको आप फिर आत्मा कैसे नाश नहीं कर सकते, ये कॉज इफेक्ट रिलेशन आप थोड़ा बताइए ना। देखो आत्मा पहले था, आत्मा से क्या आया, ब्रह्मन की माया शक्ति से पहले आकाश आया, आकाश का कॉज कौन है? हाँ, पहले ब्रह्मन था, ब्रह्मन की एक शक्ति माया है, माया से आकाश आया, तो आकाश का कॉज क्या है, हेतु क्या है, माया का हेतु क्या है, ब्रह्मन है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो ये सारे ब्रह्मन के इफेक्ट नहीं हुए? जैसे ऑर्नामेंट्स गोल्ड को नाश नहीं कर सकते, उसी तरह से ये पांच तत्व मिलके ब्रह्मन का नाश नहीं कर सकते। आपको विश्वास हुआ? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वैसे भी स्थूल जो है सूक्ष्म का नाश नहीं कर सकता, तत्व बोध में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पांच कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राण, मनो विज्ञान, आनंद। सबसे स्थूल कौन है? अन्नमय कोष, उससे थोड़ा सूक्ष्म, कैसे सूक्ष्म, सूक्ष्म किसको कहते हैं? सटल, मतलब किसको कहते हैं वेदांत में? मोर परवेसिव। अब देखो स्थूल शरीर जो है ना, ये इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, हो गया ना, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, आप सांस फुला के आधा इंच बढ़ा लोगे। प्राण, प्राण निकल के, मोर परवेसिव ना, थोड़ा बाहर तक गया ना। माइंड, अच्छा माइंड का भी लिमिटेशन है, माइंड वहीं तक जाएगा जहां वो जा चुका है। आप दिल्ली बोलो पहुंच जाएगा, आप बोलो होनुलुलु चलो
वो भी पहुंच जाएगा,
अगर देखा होगा तब, नहीं तो
पहुंचेगा,
अरे तो हो गया ना, नहीं पहुंचेगा। मगर बुद्धि, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, वो कल्पना कर लेगी। देखो प्राण जो है ना वो अन्नमय कोष को कंट्रोल करता है और उसको नरिश करता है, अगर प्राण नहीं हो गए तो अन्नमय कोष डेड है। मन जो है प्राण को कंट्रोल करता है, आपका अगर मन उत्तेजित होगा तो आप देखोगे आपके जो है श्वासें जोर हो जाती हैं, आप क्रोधित हो गए श्वास बढ़ जाती है। मन जो है उसको कंट्रोल करता है, प्राणमय कोष को, आनंदमय, अन्नमय कोष को, विज्ञानमय कोष बुद्धि इन सब को कंट्रोल करती है, आनंदमय कोष बाकी सब कुछ। तो नियम ये है कि जो सूक्ष्म है वो स्थूल को कंट्रोल करता है। तो तो ये जितनी चारों चीजें बताई गई हैं वो सारी की सारी स्थूल है। सबसे सूक्ष्म क्या है? आत्मा। तो ये जो है उसको नाश नहीं कर सकती। ठीक है, भाग्य वर्ष में क्या कहते हैं श्लोक में भगवान?
अच्छेदोयम् मदायोयम्
अच्छेदोयम् मदायोयम्
अक्लेदो शोषयेव च
अक्लेदो शोषयेव च
नित्य सर्वगत स्थानुः
नित्य सर्वगत स्थानुः
अचलोयम् सनातनः
अचलोयम् सनातनः
अच्छेदोयम् मदायोयम् अक्लेदो शोषयेव च
नित्य सर्वगत स्थानुः
अचलोयम् सनातनः।
भगवान वही बात को फिर दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं मैं बाद में बताता हूं। कहते हैं अच्छेद्यो अयम, मेरे को कोई काट नहीं सकता। अदायो यम, मेरे को कोई दाह नहीं कर सकता, जला नहीं सकता। अक्लेद्यो, कोई मेरे को भिजा नहीं सकता, आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता, कोई उसको सुखा नहीं सकता। इसलिए क्योंकि वो आत्मा नित्य है, सर्वगत है, स्थानु है, अचल है और सनातन है। तो ये रिपीट क्यों कर रहे हैं भगवान? देखो पिछले वाले श्लोक और इस श्लोक के अंदर तत्व एक ही है, मगर दो तरीके से बताया गया है। पहले वाले के अंदर यह बताया गया है कि काटने वाले में योग्यता नहीं है। ये जितने भी शस्त्र जो आप पिछले वाले में बताए गए हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इनमें योग्यता नहीं है ये काम करने की। और इस वाले श्लोक में बता रहे हैं कि कटने वाले में कटने की योग्यता नहीं है। पहले बता रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ता कोई कर नहीं सकता, ये कर्तापन का भाव कोई नहीं आ सकता, ला सकता। दूसरे में मेरे ऊपर कर्म नहीं हो सकता। इस तरीके से दो तरीके से वो बता रहे हैं। देखो आत्मा ना तो मिट्टी है, ना पानी है, ना वायु है, ना अग्नि है। आत्मा ये सब चीजें नहीं है। आत्मा क्या है? बोले इन सब का आश्रय दाता है, इन सब का सबस्ट्रेटम जो है वो आत्मा है। आत्मा है बोल के ये चीजें हैं। आत्मा अगर नहीं होता, ब्रह्मन अगर नहीं होता। अच्छा आत्मा ब्रह्मन में डिफरेंस क्या है? हाँ, ब्रह्मन कंडीशन बाय उपाधि आत्मा, आत्मा अनकंडीशन ब्रह्मन, कोई फर्क नहीं है। बहुत अच्छा, इन सब का आश्रय दाता है, तो वो आत्मा कैसा है? यहां शंकराचार्य जी कहते हैं ये आत्मा न कटने वाला है, न जलने वाला है, न गलने वाला है, न सूखने वाला है। आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पंच महाभूत, देखो पंच महाभूत आपस के नाश कर सकते हैं, आपस में नाश कर सकते हैं। अग्नि जल रही है, उसके अंदर पानी डाल दिया, या आग जल रही है उसके ऊपर पानी रख दिया, वाष्प हो गया, पानी खत्म हो गया। आपस में नाश हो सकता है, मगर ये पांचों मिलके बोले आत्मा का नाश नहीं कर सकते। पंचभूत इस आत्मा का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए ये नित्य है। हम लोगों ने नित्यता एक अलग तरीके से देखी थी, आगे बताया था ना जायते मृियते, वहां भी नित्यता बताई गई थी। अब ये बोलते हैं नित्य है क्योंकि ये पांच महाभूत जो है उसका नाश नहीं कर सकते, इसलिए नित्य है। नित्य होने से बोलते सर्वगत है, नित्य है इसलिए वो सर्वगत है। सर्वगत है मतलब सब जगह गया हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आत्मा नहीं है। उसके बोलते हैं स्थानु, स्थानु मतलब स्थिर, ठूंठ की तरह, जैसे एक पेड़ का तना जो है कहीं पर रखा हुआ है, वो स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है। उसके बाद कहते हैं अचल है। स्थिर और अचल का मतलब क्या हुआ? बोले पेट की तरह स्थिर तो हो सकता है मगर ऊपर में हवा के कारण मूव करता होगा. चल बोलो वो मूवमेंट भी नहीं है. देखो कितनी सूक्ष्म बातें बताई गई हैं. हो सकता है वो ठूंठ वो पेड़ जो है की तरह है और वो फिक्स है नहीं हिल रहा है मगर उसका सिर तो हिल सकता है ना. पत्ते हिलते हैं ना, ब्रांचेस हिलती है ना. बोलते वो भी नहीं. अचल सनातन, सनातन मतलब अनादि, उत्पन्न नहीं हुआ. अब कहते हैं कि इन श्लोकों में पुनरुक्ति के दोष का आरोप नहीं करना चाहिए. आप बार बार एक ही बात बार बार बोलते जा रहे हैं. एक बार इस तरफ से बोलते हैं फिर उधर से बोल देते हैं. ऐसे ही तो कर रहे हैं. क्योंकि न जायते मृियते वाय इस एक श्लोक के द्वारा ही आत्मा की नित्यता निर्विकारता तो कही गई है. फिर आत्मा के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वह इस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है. कोई शब्द से पुनरक्त और कोई अर्थ से पुनरक्त. पर एक ही बात बार बार क्यों बोलते जा रहे हैं भगवान. आज पिछले चार डिस्कोर्स में आप खाली नित्यता 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 एक बार तो बोल दो. एक नित्य वर्ड आत्मा नित्य है. चार डिस्कोर्स की क्या दरकार थी उसमें. शंकराचार्य जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं सुनिए जरा. परंतु आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है. वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बड़ा दुर्बोध है. सहज ही समझ में आने वाला नहीं है. बहुत सहज में समझ में नहीं आएगा. इसलिए बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव उसी तत्व का निरूपण करते हैं. That is why he is repeating again and again and again from this angle, that angle, इधर से आओ उधर से आओ. न उसके ऊपर कर्म हो सकता है, न उसके ऊपर कोई कर्ता का भाव आ सकता है, न मारता है न मरता है. डिफरेंट तरीके से उसको समझाने की चेष्टा करते हैं. क्यों करते हैं भाई? यह सोच करके किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्व इन संसारी पुरुषों की बुद्धि गोचर होकर संसार की निवृत्ति का कारण बन जाए. क्यों पुनरुक्ति कर रहे हो भाई? बार बार क्यों बोल रहे हो? बोले इसलिए बोल रहे हैं कि ये संसारी पुरुष को किसी तरीके से अगर समझ में आ जाए तो इनका दुख का कारण समाप्त हो जाएगा. अच्छा एक और श्लोक देख लेते हैं.
अव्यक्तोयम् अचिन्तोयम् अव्यक्तोयम् अचिन्तोयम् अविकारोयम् उच्यते अविकारोयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् तस्मादेवं विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोयम् अचिन्तोयम् अविकारोयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि.
तस्मात् फिर एक कंक्लूजन आ गया. देखो इस श्लोक के साथ में भगवान आत्मा के बारे में जो कुछ कहना था वो खत्म कर रहे हैं. इसके बाद आत्मा की बात नहीं आएगी. यहां कहते हैं तस्मात एवं विदित्वा एनम. ऐसा अगर आप जान लो कि नान सोचती मर्जी कि ये इसका नाश नहीं हो सकता तो ये शोक करने की कोई दरकार ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये अव्यक्त है. जो चीज अव्यक्त हो उसके ऊपर क्या कर सकते हो तुम? कोई चीज व्यक्त हो दिखाई पड़े तब तो उसके ऊपर कुछ करें. जो चीज दिखाई नहीं पड़ती है तो उसके ऊपर क्या आप क्रिया कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते. अव्यक्तोयम् अचिंत्यो बोले सोच भी नहीं सकते उसके द्वारा. अचिंत्योम अविकार्यो बोले उसका कोई विकार भी नहीं कर सकते. उसको चेंज भी कुछ नहीं कर सकते. कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते उसके ऊपर. तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. भगवान ये कहना चाहते हैं अर्जुन न तुम उन लोगों के ऊपर कुछ कर सकते हो, उन आत्माओं के ऊपर कुछ कर सकते हो जो उधर खड़े हैं, और न ही वो तुम्हारी आत्मा के ऊपर कुछ कर सकते हैं. किसी तरीके से भी कोई भी आदमी उस आत्मा के ऊपर में कोई विकार पैदा नहीं कर सकता. और 24 और 25वें श्लोक के अंदर भगवान ने आत्मा के बारे में 8 निर्देशक, 8 पॉइंटर बताए हैं, 8 पॉइंटर्स। क्या क्या है? नित्य, नित्य मतलब सर्वदा एक रूप, कोई उसमें विकार नहीं है। सर्वगत, वो सब जगह है। स्थानु, स्थानु मतलब एक स्थान पर है, फिक्स है, उसमें विकार नहीं है, उसमें चेंज नहीं होता है। अखंडानंद महाराज बोलते थे कि आत्म तत्व ठसा ठस भरा हुआ है, देर इज नो स्पेस टू मूव हियर एंड देयर, ठसा ठस भरा हुआ है। बहुत खूब। उसके बाद ने अचल कह दिया, अचल मतलब स्थानु एक जगह पर फिक्स है, स्थानु, मगर वो स्थानु चीज भी ऊपर हिल सकती है, अचल, मूवमेंट भी नहीं है। क्यों मूवमेंट नहीं है? ठसा ठस भरा हुआ है, कहां जाएगा और कहीं नहीं घूम सकता वो। सनातन, सनातन अनादिकाल से है, बिगनिंगलेस टाइम से है। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप उसको नहीं देख सकते, पकड़ नहीं सकते। अरे ज्ञानेंद्रिय नहीं से तो अच्छा मन से पकड़ सकते हैं? नो, अचिंत्योयम, मन से भी नहीं पकड़ सकते उसको आप। अविकार्य है, कोई विकार नहीं है उसमें। बोले क्यों ही विकार नहीं है, क्या कारण है? तो बोलते हैं शंकराचार्य जी कि इसके अंदर निरअवयवात्वात्, क्योंकि उसका अवयव नहीं है। अवयव मतलब अंग नहीं है, पार्ट नहीं है। कोई पार्ट हो तभी तो उसके अंदर विकार आएगा। बोले तो पार्टलेस है, उसमें ग्रॉस बॉडी, सरल बॉडी, कॉजल बॉडी है ही नहीं। जितना प्रॉब्लम होता है वो किसमें होता है, विकार किसमें होता है? ग्रॉस बॉडी में, सरल बॉडी में, माइंड में होता है, कॉजल बॉडी के अंदर होता है। देखो ग्रॉस बॉडी का विकार तो आपको समझ में आता है ना, 7 पाउंड से आप अभी 170 पाउंड हो गए हैं, विकार हुआ है, है? मन, मन के अंदर भी विकार होता है, कभी अच्छा मन है, कभी बुरा मन है, वो भी विकार होता रहता है, उसमें वृत्तियां आती जाती रहती हैं कंटिन्यूसली। कारण शरीर के अंदर भी विकार होता रहता है, वासनाएं चेंज होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अगर आप ठीक तरीका नहीं जानते हो तो आपकी वासनाएं बढ़ती जाएंगी, उसमें भी विकार होता रहेगा। पर इसके अंदर, आत्म तत्व के अंदर कोई विकार नहीं है, इसलिए नान सोचित वर्षी, इसलिए अर्जुन तुम शोक नहीं करो। अर्जुन का रोग क्या था? शोक था, उसको दुख हो गया था। तो भगवान कहते हैं देखो आत्मा की दृष्टि से शोक का कोई सवाल उठता ही नहीं है। क्यों शोक करते हो? आत्मा न मरता है, न मारता है, न मरवाता है, कुछ नहीं करता है, क्यों शोक करते हो? भगवान का एक आर्गुमेंट खत्म हो गया आत्मा की दृष्टि से। 11वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक भगवान ने आत्मा के बारे में जो कहना था कह दिया। अब भगवान जो है दूसरे स्तर पर उतरेंगे, जीवात्मा लेवल पर आएंगे, फिर शरीर लेवल पर आएंगे, फिर व्यवहारिक लेवल पर आएंगे, और हर लेवल पर आके वो सिद्ध कर देंगे कि अर्जुन हर जगह हर किस्म से शोक करने का स्कोप ही नहीं है कोई। तुम क्यों शोक कर रहे हो? किसके लिए शोक कर रहे हो बताओ? तो ये फिर दूसरा लेवल जो है, ए नॉच लोअर, उसको हम तो आज एक टॉपिक, एक लेवल का एक आर्गुमेंट खत्म हुआ। 11 से लेकर 25 तक आत्म तत्व का था। ओ
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।